We're hitting the home stretch of the chapter 15. I'm going to attempt to connect the discussion we had at the close of yesterday evening with the section that we're going to be discussing this morning. And I'm going to request your maximum attention, because I feel that both the subject matter that we're about to discuss and your present life situation, for that matter, anybody's life situation, but even specifically your life situation, is extremely relevant. And if you capture the message, you'll be very happy. We'd like to see you all very happy. And if you don't capture the message, you can be a little happy, but not as happy, and struggle. So we're interested to see you all happy. And when you become happy, so many other people will become attracted to become happy. Happy devotees of Krishna. And your family life will be happy, and it's the right outcome. So I'm going to outline three things that are, hopefully, they'll be take home with you points. And it relates to the discussion we had yesterday evening. The observation that I was making, that there seems to be a theme in the questions that are being asked. You remember that discussion last night? So the theme is practicing Krishna consciousness conceptually, but not having it touch one's heart. And conversely, how to have the practice of Krishna consciousness touch your heart. So I was indicating that's what you should do, and now I'm going to give you some how-to points. You can take this as instruction. And it will, you see, in the course of this morning, how it connects with the subject matter that we're immediately studying. There are three very important and basic activities in our life as devotees. We chant the holy name. And we receive instructions. How to practice Krishna consciousness, and who is Krishna, and so forth. And another is we associate with devotees. There was some discussion yesterday about how to properly associate with devotees when we see ourselves as inadequate to do so. Each of these three areas, my request, or however you want to think of it, instruction, the teaching that I'd like to impart, is do each of them from the heart. I gave a very specific indication how Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur described how to chant from the heart. Did anyone think of that during this morning's chanting? Did it seem to have some effect in the quality of chanting? Not just make sound, but call from the heart. And how do you call from the heart without receiving? First is receiving. Because otherwise you're trying to do from your head, not from your heart. So, rather than repeating the same thing again from yesterday evening, there's no harm to repeat it, but try to chant from the heart by calling, I'll half repeat it, calling for the deliverer of the holy name, that the most merciful of all deliverers of the holy name is Lord Nityananda. He is the direct expansion of Lord Chaitanya, so you can say, Lord Chaitanya, if you like. But Lord Nityananda, madman to deliver the holy name. Madman, take the holy name, pure holy name. Not just make some sounds, we're all making some sounds. Chant the pure holy name by receiving it. So if you are eager to receive it, from the most powerful, merciful Lord Nityananda, and then you call the holy name. That's chanting from the heart. That's chanting. Practice that. From the heart. And then instructions. So we have scripture. And we have spiritual masters. Here, Srila Prabhupada is giving himself to you, to each one of us, but it's very personal. It's not impersonal, it's very personal. When you read, this is the second category, when you read Prabhupada's books, or when you're hearing recordings of Prabhupada speaking, or your spiritual master speaking, hear from the heart. Receive the message. Prabhupada wrote this for me because it's true. He wrote it for us personally, and read with that spirit. What message is it that Prabhupada wants to give to me personally? And let that touch your heart. And then see what happens when it touches your heart. What I'm saying right now is going to immediately connect with the discussion for the 15th chapter of Canto 1. As we're going through this discussion, practice. Rupa Goswami uses the word anukulyena krishna anushilana, anushilana. In his introduction to Nectar Devotion, Prabhupada doesn't say the word anushilana, but he uses the word cultivation. Devotion to Krishna is a type of cultivation. And then he says it again and again, cultivation, cultivation. So that's what I'm asking you to do. Cultivate. That's bhakti. Develop your bhakti muscle by practicing receiving the instructions of Prabhupada's teachings from the platform of the heart. Let it, just open your heart and let it enter in. Prabhupada is speaking to me. Hear in that way. Or the explanation, the expansion of those teachings through your spiritual master. Hear that this is for me. From my heart, I'm opening my heart to receive that which this person who cares very much about me is giving to me. It's not information out here. It's change of heart within. Shrinvanti gayanti grananti sadavaha. I'm being very explicit on purpose. explicitly, as soon as we're done with giving this kind of, you know, take home from this seminar, we'll go into the verses and their purports and try to hear in that way. Practice, cultivate. Anushilana. Take it within your heart. Hear in that way from the scriptures and your spiritual master, the explanation of the scriptures. And the third is loving exchanges. We spoke yesterday about loving exchanges. So how to practice from the heart loving exchanges? I'm going to request each of you personally, not somebody else, but each of you personally. I mean, other people can do it too, but this is a request for you personally that those of you who have a mentor practice loving relationships in that relationship from the heart. And relationship means you receive and you give and do it from the heart. Practice. I will do it again. The holy name. Practice. Not just making sounds because I'm supposed to do it. Receive the pure holy name. Call out from the heart. Let that touch your heart. And then call out from the heart. Practice that. Cultivate that. Then your bhakti will awaken. Maybe it'll even erupt. But at least it'll awaken. Then scripture. And the teachings that you hear explaining the scripture. Receive it from the heart. This is for you. Prabhupada gives the example that like a person that's in the bottom of a well and they're calling out, help, help. And someone up at the top of the well hears the voice way at the bottom of the well and they lower a rope. Grab onto the rope. It's for you. It's personal. Just grab hold of the rope. They'll pull you up. You don't have to climb the rope. Just grab hold of the rope. And that rope is the instructions. And it's for you. Take it in a personal way. Wow. This person that's not down at the bottom of the well, they want to rescue me out of this well. See what happens. Cultivate like that. The name, teachings, and loving relationships. Start. You can go beyond that, but start at least with those persons who are very carefully, very lovingly, caringly guiding you. The how-to is less important than that relationship. Because you can get all the how-tos in the world and still not go anywhere. Because the essence of Krishna consciousness is loving relationships. So focus on that loving relationship. Cultivate that. Open your heart to that relationship. See what happens. And put those three together. And all of your how-to questions will be answered. And in the verses that we're going to discuss this morning, you'll see the predicament of Arjuna is our predicament, not, you know, carbon copy of the details, but the essence. And how he addresses his situation tells us how we can address our situation. And Prabhupada's wonderful purports are helping us. So my request is, don't wait to practice till tomorrow. Practice this morning. Right now. And we'll go to the Srimad Bhagavatam verses to practice the teachings, receiving teachings from the heart. It's meant for you, each one of us personally.
Hare Krishna. Maharaj ne ye bataya ki aaj jo class hum sunne wale hain isko aap kripya bade dhyan se sune kyunki jo bhag abhi hum aaj jis pe hum padhenge bhagwat se wo hamare apne life mein apne jeevan mein abhi hum jis paristhiti mein hain उस पे बिल्कुल ही वो रेलेवेंट है. इस समय अपने को अपने जीवन में इसको हम उपयोग कर सकते हैं. इसलिए महाराज ने कहा कि कृपया करके इस क्लास को बड़े ध्यान से सुने. महाराज ने कहा कि अगर हम इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझ जाएंगे कि क्या सार बता रहे हैं महाराज तो हम बहुत ही संतुष्ट रहेंगे. और महाराज चाहते हैं कि हम बहुत ही संतुष्ट रहें, सुखी रहें कृष्ण भावनामृत में. अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हमें हाँ थोड़ी बहुत खुशी रहेगी, थोड़ी संतुष्टि रहेगी, पर पूरी तरह से संतुष्टि नहीं रहेगी. और अगर हम इस तरह से संतुष्ट हैं ये सार समझ करकर तो हमारे कुटुंब के सदस्य भी संतुष्ट रहेंगे और जो हम और लोगों से मिलते हैं वो भी हमको देखकर उनके भी मन में इच्छा आएगी कि मुझे भी ऐसे संतुष्ट बनना है. तो महाराज ने कहा कि मैं तीन मुख्य बात बताऊंगा, मुख्य सूचनाएं ये जो तुम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो. महाराज ने कल शाम को ये बताया कि कि जो हम जो डिवोशनल सर्विस भक्ति युक्त सेवा हम जो अभ्यास कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत ये मानसिक भावना से नहीं बल्कि अपने हृदय से करना है और उन दोनों में बहुत अंतर है. और हम ये जानना चाहते हैं कि आज हम ये जानेंगे कि हम किस तरह से ये अभ्यास करें कि हम ये हृदय से सारे अपने सेवा करने, हृदय से कृष्ण भक्ति की पालन करें. महाराज ने कहा कि सबसे पहले हरि नाम जाप चैंटिंग. दूसरा महाराज ने बताया कि जो इंस्ट्रक्शंस मिल रही है हमें, जो शिक्षाएं मिल रही है, और तीसरा डिवोटी एसोसिएशन, भक्तों की संगत. महाराज ने कहा ये तीन चीज आप अपने पूरे हृदय से करिए. तो हृदय से कैसे करें? पहले सबसे पहले हरि नाम जाप. इन सब में पहले हम हृदय से करने के पहले हम किस तरह से इसको ग्रहण करते हैं ये सबसे विशेष बात है. क्योंकि अगर हम इसे ढंग से ग्रहण ही नहीं कर पाए तो हम किस तरह से इसको उपयोग करेंगे, किस तरह से अप्लाई करेंगे. तो हृदय से करने का मतलब यह है कि सबसे पहले हमने को ऐसे ग्रहण करना है जो भी हमें शिक्षाएं मिल रही हैं. तो जैसे महाराज ने कहा है कि हम ये चैंटिंग में हम कैसे इसकी उपयोग कर सकते हैं, हम बड़े तीव्र सा से सिर्फ नाम ऐसे जपना नहीं पर तीव्रता से हम प्रार्थना करें, नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करें, नित्यानंद प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव को प्रार्थना करें कि आप शुद्ध नाम हमारे हृदय में उतारें. और उस भावना से अगर हम जाप करते हैं तो अपने अपने मन में वो हृदय से जाप करने वाली बात होती है, या सिर्फ मानसिक तरह से नहीं, हृदय से हमारा हृदय बदलने के लिए हम प्रार्थना करते हुए जाप करनी चाहिए। दूसरा, ये जो हमको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, सूचना है, एक तो शास्त्रों से हम श्रील प्रभुपाद की किताबें पढ़ते हैं, और हम आध्यात्मिक गुरु से हम श्रील प्रभुपाद की किताबों की विवरण सुनते हैं। तो ये दोनों को भी हमको हृदय से करना है। किस तरह से? जब हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ रहे हैं तो हमको ये ऐसे पढ़ना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद ये मेरे लिए बोल रहे हैं, मेरे लिए, सब इधर सबके लिए ऐसे जस्ट कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे, मेरे लिए बोल रहे हैं वो। और उसी तरह जब महाराज से हम क्लासेस सुन रहे हैं, टेप से या अभी जैसे क्लास सुन रहे हैं, हमको इस भावना से सुननी चाहिए कि ये मेरे लिए पर्सनली ये सूचना दी जा रही है, इस भावना से सुननी चाहिए। क्योंकि जो यहाँ पर ये हमें कल्टीवेट करना चाहिए, श्री रूप गोस्वामी ने शब्द कहा कि अनुशीलनम, मतलब ये बस ऐसे ही अपने आप उत्पन्न नहीं होगा, हमें ऐसे प्रयास करना चाहिए कि इस भावना से हम सुने, इस भावना से हम ऐसे जाप करें। सो वो प्रयास जो अभ्यास हम कह सकते हैं, कल्टीवेशन, उसे हम करना है। तो हम इस तरह से अगर हम श्रवण करते हैं, अपना हृदय खोल करके श्रवण करना चाहिए कि ये जो हम जिससे सुन रहे हैं वो हमारे लिए इतना केयर करते हैं, इतना हमारी देखरेख कर रहे हैं, हमारे प्रति इतना उनको प्रेम है, तो ये हमारे भलाई के लिए एक सूचना दे रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं, तो इसे मैं दिल खोल करके मैं सुनना चाहता हूं। इस भावना से हम जब सुनते हैं तो हमारे हृदय में परिवर्तन आएगी। हम अगर बस ऐसे ही सुनते हैं कि हाँ ये हमने कुछ कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ कुछ हमको क्या क्या है भागवत में, ये हमको कुछ पता चला, कौन किसका किस किस का क्या क्या नाम है और क्या क्या, बस हम ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए अगर सुनते हैं तो परिवर्तन नहीं होती है, हृदय से सुनना चाहिए। तीसरा, जो प्रीति वाले लेन देन, लविंग एक्सचेंजेस, जो प्रीति वाले, प्रीति से जो भक्तों के साथ हम लेन देन करते हैं, महाराज ने कहा कि उसको भी हृदय से करना चाहिए। महाराज ने एक उदाहरण दी कि श्रील प्रभुपाद ने एक बार बताया कि एक आदमी कुएं में नीचे गिर पड़ा और वो पुकार रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, इस कुएं से बाहर निकालो। तो एक और आदमी जो ऊपर से ऊपर था, उसने देखा नीचे कि आदमी कुएं में है, और उसने एक रस्सी नीचे कर दी और कहा कि तुम कुछ मत करो, तुम बस वो रस्सी को अच्छे से पकड़ लो, कस के पकड़ लो रस्सी को, हम तुमको खींच देंगे, तुमको रस्सी चढ़ने की भी जरूरत नहीं है, तुम बस उसको ढंग से पकड़ो, हम तुमको खींच देंगे। तो उस समय पर वो आदमी क्या सोचता है कि अरे मैं यहाँ नीचे गिरा हुआ हूं, मैं बाहर नहीं निकल सकता, और जो बाहर है वो मेरे को इतने अपने कृपा से वो मुझे बाहर निकाल रहा है, तो मैं अच्छे से कस के पकड़ूंगा इसे। तो महाराज ने बताया कि जो इंस्ट्रक्शंस होती है, सूचना है, वो है ये रस्सी के समान। सो जो महाराज हमको सूचनाएं दे रहे हैं वो हमको बाहर निकालने के लिए इस कुएं से, तो हमको पूरे जी जान से उसको सूचनाओं को पकड़ना चाहिए, पूरे प्रेम की भावना से। तो महाराज ने कहा कि हम इस ये लविंग एक्सचेंजेस, प्रीति के जो लेन देन है, हम इसकी अभ्यास उनसे शुरू कर सकते हैं जो हमको बड़े केयर कर रहे हैं, जो हमारे मेंटर्स हैं, हमारे जो मेंटर्स हैं, जो महाराज ने भक्तों को सौंपा है अपनी देखभाल के लिए, उनके साथ हम ऐसी लेन देन प्रयास करना शुरू कर सकते हैं। उनसे सुने और इस तरह से और अगर हम ये तीनों चीज जाप करना, इंस्ट्रक्शंस ये शिक्षाएं और ये लविंग एक्सचेंजेस लेन देन प्रीति से भक्तों के साथ जो लेन देन है, जो हम ऐसा हम हृदय को करेंगे तो बहुत सारे जिज्ञासे वाले जो प्रश्न है कि इसे कैसे करना है, इसे कैसे करना है, इसे कैसे करना है, ये सब का समाधान आपको वैसे ही मिल जाएगा। पर अगर हम ये नहीं करते हैं और बस ये जिज्ञासा रखते हैं कि इसे कैसे करना है, ऐसे कैसे करना है, हमको सारे कैसे करना है, कैसे करना है सबकी उत्तर मिलने के पश्चात भी हम उसको अपने जीवन में प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो महाराज ने ये कहा, तो महाराज ने कहा कि अभी मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम इसको जाके कल इसकी अभ्यास करो, अभी इसी क्लास के दौरान जब हम ये सूचनाएं अभी सुनेंगे, अर्जुन के बारे में ये सब अभी सुनेंगे, तो हम इसी हृदय से, खुले हृदय से सुनने की अभी से अभ्यास करें।
Prabhupada has used this expression many times that Arjuna in Bhagavad Gita, Arjuna is being spoken to by Krishna so that Krishna can speak to us. The example, the mother instructs the daughter by instructing daughter-in-law by instructing the daughter. So the mother-daughter relationship is clear. The daughter-in-law relationship is not yet clear. So rather than risking the mother-daughter-in-law relationship, she instructs the daughter in front of the daughter-in-law. So the daughter-in-law can hear. And she doesn't feel hurt. Oh, why is he picking on me? It's instructing the daughter. Similarly, Krishna is instructing Arjuna for the purpose of instructing us. The actual instruction is for us, but Krishna is instructing Arjuna. What we're getting here is, how did Arjuna receive? We're getting, as I mentioned yesterday, we're getting the inside look at Arjuna's heart. How did he receive that? Well, we know how he received it from Bhagavad Gita. Krishe vachanam tava. I accept everything that you've said. I'm ready. There was a problem. What's my duty? Solution. Hear from Krishna. Okay, I'm ready. Next problem. Oh, Krishna's gone. Solution. Remember what Krishna said. And what happens when you remember, even in separation, what Krishna said? You feel Krishna's presence. Solution. Now what about our life? We're not Arjuna. But in our life, things are so orchestrated in the material world that whatever, however pious one may be, or good one may be, and nice one may be, and all those things, there's fruits, but then there's always the cycle that things start to disintegrate. and sometimes quickly. Sometimes it's a calamity. Sometimes our life gets shattered. It happens. It's just part of the design of the material world. And what do you do when that happens? It could be a small one. It could be a medium one. It could be a big one. But what do you do when we use this phrase in japa retreats, when you're chanting. Sometimes chanting is going very nicely. We call that hills. There's times when your chanting is struggle. We call those valleys. Life is like that. Chanting is like that. Our existence in the material atmosphere, which is where we are, is like that. Now, how are we personally to conduct ourselves when sometimes it's hills and sometimes it's valleys? Particularly when we're in a valley. Generally, when we're on a hill, we don't worry about it. We're just like, you know, complacency. Life is good. But we get more acutely attentive when there's a problem facing us. And there's always problems. It's just a question of how intense it is. That's the reality of our experience. How to address that? The Bhagavatam in this section is giving us wonderful instruction through Arjuna. In Bhagavad Gita, it's Krishna instructing Arjuna. Now it's Arjuna processing Krishna's association. And what he's saying, what he's feeling, is devastated, crushed. Powerful Arjuna. He can't speak. He's not just, you know, a man. He's a warrior, crying, despondent and weak. And his brother, his beloved Yudhisthira, who he would not do anything or not do anything unless Yudhisthira nodded and gave his affirmation, then he would do or not do. So it attached to Yudhisthira. Yudhisthira is prying from him. What are your feelings? Why are you feeling this way? And he's disclosing. It's a loving exchange. He's revealing his heart. And his heart says, I'm terribly despondent. Krishna this, Krishna that, Krishna this, Krishna that, Krishna this, Krishna that. That's what we heard. And now he's gone. So the pain is separation from Krishna. But that's spiritual. But it doesn't look spiritual. It looks like, you know, looks like material devastation. But it's not. To make this, like, you know, really come home, hit home, we could give examples of problems like that expression I gave you, things that you don't like, and you write so many of them, things I don't like. But it could be, you know, in a very personal way. Someone, a relative dies suddenly, or somebody's, you know, they're diagnosed as having cancer, and we know that they're suffering terribly, and we care about the person, and it's hard to bear that. Or somebody that you know, because the economy is crashing, People lost their job. They got their family, they got their house, they got their... And they don't even have the means to take care of all of that. Just crumbled. Or there's a wonderful devotee couple, but somehow there's a conflict in their relationship and struggle. And or you may be the one going through that. Something. It's just the nature of this world. Dukkham shashvatam. It's the nature of this world. But we all want to be happy. And we want those that are dear to us to be happy. But it's not always like that. Sometimes there's hills, sometimes there's valleys. Even for pious people, it's not a question of sinful and pious. It's just the nature of the place. So now what do? If you're a dreamer, you just imagine another situation that's going to be nicer than this one and you go for it. Or, without shelter of Krishna, you get crushed. You become depressed and turn to despondency and bad thoughts and intoxication and madness. You know, passion or goodness, take your choice. But that's not the option that's being offered to us here. The option that's being offered to us is, using Prabhupada's language, in critical times, we're being given instruction how to deal with valleys in life. I'm going to read now the text 27 and parts of the purport. And I invite you once again, open your heart and receive this here. Practice it. Arjun says, "Now I am attracted to those instructions imparted to me by the personality of Godhead, Govinda, because they are impregnated with instructions for relieving the burning heart in all circumstances of time and space. Purport by Śrīla Prabhupāda. Herein, Arjuna refers to the instruction of Bhagavad Gita, which was imparted to him by the Lord on the battlefield of Kurukshetra. The Lord left behind him the instructions of Bhagavad Gita, not for the benefit of Arjuna alone, but for all time and in all lands." That means us. Not just 5,000 years ago, the relevance is today. At all times, all going into the future, in all lands, it's for everyone. Because Arjuna was in a dilemma, what do I do? Here's this problem. How do I address this problem? Bhagavad Gita being spoken by the Supreme Personality of Godhead is the essence of all Vedic wisdom. So there was a specific problem for Arjuna. The problem which arose in the heart of Arjuna on the battlefield of Kurukshetra was solved by the teachings of Bhagavad Gita. Again, it was solved. Problem solved. Now we've got another problem. Life has a whole array of problems. After the departure of the Lord from the vision of the earthly people, when Arjuna was face to face with being vanquished in his acquired power and prominence, he was on a hill, but now no strength, no power. What to speak of his feelings of separation from Krishna, everything that he had that made him in the estimation of others great was gone by Krishna's own arrangement. He wanted again to remember the great teachings of Bhagavad Gita, just to teach all concerned that the Bhagavad Gita can be consulted in all critical times, not only for solace from all kinds of mental agonies, but also for the way out of great entanglements called life, which embarrass one in some critical hour. So I'll repeat the theme again. Let that touch your heart. What's resonating? Well, it's nice information, but you know, that's Arjuna, and that, what about me? But it's for us. In the very nice verse, you can note it down from the 10th canto, chapter 2 of Srimad Bhagavatam. There's a nice verse where these are prayers by the demigods to Lord Krishna in the womb, chapter 2. The demigods are praying to Krishna, O Lord, who resemble the shining sun, you are always ready to fulfill the desire of your devotee, and therefore you are known as a desire tree. When acharyas completely take shelter under your lotus feet in order to cross the fierce ocean of nescience, they leave behind on earth the method by which they cross. And because you are very merciful to your other devotees, you accept this method to help them. This is 10.2.31. On disappearance days of our acharyas, this is a nice verse to recite and remember. 10.2.31. Certainly Srila Prabhupada, on that very same boat, it's a contradiction. If you're going to go from this side of the ocean to that side of the ocean, that vessel that carries you from this side to that side is on the end, it's on that side. But very mystically, the acharyas leave it on this side so that you can cross over the ocean with the same boat. That's their mystical compassion. By receiving, emphasize the word, receiving with an open heart these messages, it carries you to the other side of material existence. So Prabhupada left these wonderful messages for us to get on that boat, and just by receiving those messages, we find ourselves on the other side. It's mystical. The very next verse is this verse that says, not the next verse, the when one takes shelter, that padavam plavam visho marari, when one takes shelter of the instructions that one has received coming from transcendence, this ocean of material existence shrinks to the amount of water in the hoofprint of a calf. Who can't step over that? If you at all can walk, you can step over the water in the hoofprint of a calf. How does that ocean of material problems shrink? Taking shelter, receiving within your heart the instructions that have been left behind. So now connecting this 10th canto verse about acharyas, and remember this is the demigod speaking to Krishna. Krishna also is most merciful, and he leaves instructions for Arjuna, Bhagavad Gita, which is meant for us. We take shelter of those instructions. And what happens? This problem shrinks. Because what's the nature of the problem? The nature of the problem is illusion. It's forgetfulness of Krishna. That's the problem. That's material existence. Prabhupada gives a very simple definition of material and spiritual. Listen carefully. Very simple. Spiritual is to see things in relation to Krishna. Material is to see things separate from Krishna. That's the difference. Same thing. In relation to Krishna, spiritual. Separate from Krishna, material. Okay, so here comes a problem. You're walking along the path of life and here comes a problem. Oh my God, here comes a problem. See it in relation to Krishna, or as our discussion yesterday, say yes to Krishna. Here's an arrangement that Krishna is making for me to take shelter of him. I'm not exactly sure how he wants me to take shelter of him. I've never encountered this problem before. But I know in principle, taking shelter of Krishna is the solution to the problem. So that's my faith. And I don't move from that faith of taking shelter of Krishna. Now let me, while I'm in this space of not understanding exactly how to deal with the problem, let me remember Krishna's instructions. Or let me remember Srila Prabhupada's instructions. Let those instructions touch my heart. Then I'll have some indication how to address myself to this particular problem. My dear devotees, please understand, what's happening here is we're getting a roadmap out of material existence, even in the face of problems. Just follow it. It'll get you there. At the other end is a treasure. The spiritual world. Vaikuntha, no anxiety. And we're going along in the path of sadhana bhakti, and here comes a problem. Or a bunch of problems, but it's okay. Because I'm saying yes to Krishna. I have this relationship with Krishna. I trust that relationship with Krishna. Next paragraph from the purport of text 27. The merciful Lord left behind him the great teachings of Bhagavad Gita so that one can take the instructions of the Lord even when he is not visible to material eyesight. In other words, this is checkmate. It's not like, okay, that was good for Arjuna because he saw Krishna, but I'm never going to be with Krishna, and so it doesn't apply to me. Listen carefully. Material senses cannot have any estimation of the Supreme Lord, but by his inconceivable power, the Lord can incarnate himself to sense perception of the conditioned souls in a suitable manner through the agency of matter, which is also another form of the Lord's manifested energy. Thus, the Bhagavad Gita or any authentic scriptural sound representation of the Lord is also an incarnation of the Lord. There's no difference between the sound representation of the Lord and the Lord himself. One can derive the same benefit from Bhagavad Gita as Arjuna did in the personal presence of the Lord. And what happens when you accept the Bhagavad Gita in that way? The Bhagavad Gita is meant for terminating all different types of miseries. Isn't that the Terminator? Isn't that a movie or something? The Terminator? So Krishna is the Terminator. What does he want to terminate? Material existence. How does he do it? Through his instructions to Arjuna. And we just have to pick up the Bhagavad Gita and not read it as information, but read it as, here comes the Terminator to annihilate my material existence. Let me just receive that through his instructions. Very practical. Very powerful. If we're in the disposition of heart of bhakti. And what is that? Anukulyena Krishna Anushilana. We're cultivating our relationship with Krishna. what about the problems? Yeah, but. What about the problems? This is to deal with the problems. And the solution. Because the problem is our forgetfulness of Krishna. And we forget Krishna. When we forget Krishna, we're thrown into the material world and we have all these problems that are the byproduct of forgetfulness of Krishna. And we're so busy. It's like adjusting the shadow instead of the object that's casting the shadow. You follow? We're so busy with it, so entangled with it, that we're not even paying attention to where's that shadow coming from anyway? Where's this material problem coming from anyway? It has a source. Let me go address the source, my forgetfulness of Krishna. How do I do that? Here. Receive from the heart. Just as we heard the demigod say, you are like the brilliant sun. What darkness can exist? Right in the brilliance of the sun. Darkness is dispelled. The problem is dissipated. There still may be some practical thing for us to do. That's okay. That's called devotional service. By understanding the predicament that Arjuna is in, we can understand better our predicament and the solution. That's text 27. Going to the 11th canto. This is the first canto we're reading from, chapter 15. Going ahead, in the 11th canto, we referred to this earlier also, chapter 31 discusses the same thing that we're discussing in chapter 15 of canto 1. Only Arjuna was sent by Yudhisthira to go to Dwaraka, same pastime, same storyline, to find out what's Krishna's plan. And Arjuna experienced Krishna's separation. Excuse me, Arjuna experienced Krishna's departure. There also, he's experiencing pain, like we might. Only Krishna's, Arjuna's pain is transcendental. Pain of separation. And what did he do? 11:31:21. Arjuna felt great distress over separation from Lord Krishna, his dearmost friend. But he consoled himself by remembering the transcendental words the Lord had sung to him, which means that we can do the same. Remembrance of Krishna. In his physical absence, yes. By his spiritual presence. The commentary of our acharyas said he was remembering specific verses. You know, like as a child, you maybe teach some children to recite verses from Bhagavad Gita. But ask them what the meaning of it is, they don't know. Sarva dharmam parityaja mamekam. What does it mean? I don't know. Prabhupada's instruction is for adults, for those who want to become mature in devotion, enter into the spirit of. Enter into the spirit of. Let it touch your heart. And then to give the explanation, it isn't just your head, it's your heart. You've entered into the spirit of it. Sridhar Swami, great commentator, says, one of the verses that Arjuna was remembering in Dwaraka, feeling the separation of Krishna, Naham prakasha sarvasya yoga maya samavrata mudhoyam nabijanati lokayam lokomam ajam avyayam. So Krishna is not manifest to the foolish and unintelligent. For them I'm covered by my yoga maya. So Krishna has removed himself by his yoga maya potency. Krishna manifests himself by his yoga maya potency. Krishna has removed himself. Or Jiva Goswami says, one of the verses he was prominently remembering was, Mam evaishasi satyam te pratijani priyosi me. 1865. Manmana bhava madbhakto madhyaji mam namaskuru. Mam evaishasi satyam te pratijani priyosi me. You will come to me without fail. I promise you this, because you are my very dear friend. So what happens when Arjuna remembers those instructions of Krishna? He feels strength and courage and faith from your question yesterday that I will again be with Krishna. Why? Because Krishna promises. And Krishna doesn't break promises. I may break my promises, but Krishna never breaks his promise. I feel safe. What do I have to do? Manmana bhava madbhakto madhyaji mam namaskuru. And what does Krishna do? Krishna takes us to him. Well, how do I know? So, what we're going to hear coming up is how that doubt is removed. Well, how do I know? We know by direct experience. By this process that is being described, as it worked for Arjuna, it will work for us. We can directly experience the spiritual presence of Krishna. Now, at any time, not just 5,000 years ago, we have to wait for the next time Krishna appears. I'm tempted to break again because these points are very important, but I'm going to continue and hopefully we'll finish. I'm excited about this section of the 15th chapter because it's so valuable, so practical, so meaningful, so personal, so kind, so touching, so caring. We just receive it in that way. So now, texts 28 and 29. These two go together. 27 says Arjuna starts to think of Krishna's instructions that he heard from Govinda and the battlefield of Kurukshetra. Now what happens when he hears in the proper way? Sutta Goswami says, thus being absorbed in thinking of the instructions of the Lord, which were imparted in great intimacy of friendship, and in thinking of Krishna's lotus feet, Arjuna's mind became pacified and free from all material contamination. Vimala is the word that's used. Free from all material contamination. Arjuna's constant remembrance of the lotus feet of Lord Sri Krishna rapidly increased his devotion. And as a result, all the trash in his thoughts subsided. What's the trash? The trash is seeing things that Krishna interact with the devotee as a problem instead of service. Or a lesson of the material world. The lesson of the material world is it's not a fit place to be. And it comes in the, that message comes in the form of a problem. Adhyatmaka klesha, adhidaivaka klesha, adhibautaka klesha. You're not meant to be here. This isn't a fit place. Let me return to Krishna. In the purports, I'm going to read two sections from the purports of 28 and 29, where meditating upon Krishna's instructions in this mood of feeling Krishna's separation, like that's what's really the situation in the material world, where deluded into thinking we're separate from Krishna. Because we want to think of ourselves separate from Krishna, so it's facilitated by the illusory energy, the deluding potency. Prabhupada writes, the Lord is like the sun. The sun's appearance means immediate dissipation of darkness or ignorance, and the Lord's appearance within the mind of the devotee can at once drive away the miserable material effects. Lord Chaitanya has therefore recommended constant chanting of the holy name for protection from all contamination of the material world. It's like a commercial or something. Stronger than dirt. But it has to touch the heart. So here in the next purport, we're going to hear Prabhupada use those very words. Material desires in the mind are the trash of material contamination. They accumulate due to our reactions to material desires. I'll explore that a little bit. But when we get in touch with the transcendent Lord, this is my message to you this morning. Get in touch with Krishna. Dial the Krishna channel. Don't chant absent-mindedly. Be present. When you're chanting, be present with Krishna, because Krishna is present, so don't be absent. Be present. Think of that phrase. Let it resonate and resonate. Be present with Krishna. Like when you're with another person. Supposing somebody comes to your home to see you. You should give them your undivided attention. Be present with them. Supposing somebody comes and you're just like, you know, fooling around and... Hey, man, you know, can you pay attention for a minute? Oh, yeah, okay, just then. It's insulting. It's rude. When we're calling Krishna's name, be present. You're inviting him. You're invoking. It's Hare Krishna. It's vocative. You're calling. So be present. Let the presence of Krishna touch your heart. He's so kind, he's making himself available. That's Mahaprabhu's teaching, isn't it? He's so kind. He has hundreds and millions of names, and in each and every one of his names, he's invested all of his transcendental potencies. And there's no hard and fast rules for chanting the holy name. He's so approachable. And we're absent? You got a sign in the door that says, out to lunch. Don't knock. Although we called him. Be present. And the very language Prabhupada uses here. This is the medicine. This is the antidote for our problems. It's called material existence. It's called trash of material existence. How to get rid of that trash of material existence? It's the desires to enjoy independently from Krishna. We just have to get in touch with the transcendent Lord. And I've outlined three things. There's five things mentioned in Nectar Devotion. I'm giving you three of them. Scripture, the holy name, the association of devotees. Most potent. Rupa Goswami says, if you do even one of them without offense, you'll experience bhava bhakti, ecstasy and love of God. Durdaivivam, idrisha mahajani nadaraga. Well, we don't have any attraction for these things. So unfortunate. But this is a very nice, slow step by step process of the how-to question. How to get in touch with Krishna, once again. In his variegated energies. Nijasarva Shaktis. By devotional service. The naked forms of all material desires which have become manifest and the intelligence of the living being is pacified by its true color. As soon as Arjuna turned his attention towards the instructions of the Lord as they are inculcated in Bhagavad Gita, his true color of eternal association with the Lord became manifest, and thus he felt freed from all material contaminations. This section is so important that our acharyas make special commentary about it. Jiva Goswami, in several places in his Sandarbhas, refers to it. It's a special section. There are many special sections of the Bhagavatam. This is one of them. Sridhar Swami mentions that these two verses indicate that Arjuna's mind was settled by devotion to Krishna. Jiva Goswami comments in his Bhakti Sandarbha that in the previous chapter 13, this is chapter 15, but we summarize chapter 13. Vidura is speaking to Dhritarashtra in chapter 13. And Narada is speaking to Yudhisthira in chapter 13. And both of them are giving the same instruction. Dhritarashtra, what's your problem? Yudhisthira, what's your problem? You're out of touch with spiritual reality. That's your problem. And as a result, you're attached to some material thing. The material thing is not the problem. It's your attachment to that material thing. It's your detachment or disconnect from the personality of Godhead. So by the powerful words of Vidura, Dhritarashtra got straightened out. By the powerful words of Narada, Yudhisthira got straightened out. By the powerful words of Krishna, Arjuna is getting relieved of all the grief that was his problem, separation from Krishna. In the list that we heard yesterday of Arjuna's feelings towards Krishna, and how he was so kind to the Pandavas, but now he's gone. The sense of the of each of these, Dhritarashtra, Yudhisthira, Arjuna, is the sense of happiness is to depend upon Krishna. Because he had forgotten his relationship with Krishna in the full sense of full dependency upon Krishna, he was feeling great distress. But now he's feeling relief, because his dependence upon Krishna was again fully in his consciousness. Now comes a very important, in our teachings of Lord Chaitanya, an important instruction, but also very difficult, subtle. And that is the feelings of separation. Feelings of separation enrich the sense of meeting with Krishna. We hear this, but how do we apply that in our case, because we're not so advanced to feel separation from Krishna? But we're in that space of deluded, having the sense of being separate from Krishna. The secret for us is to desire to again be connected with Krishna, or be in our relationship with Krishna. That's how we can cultivate feelings of separation from Krishna. We want that relationship. If we want that relationship, it's not so strong. The want isn't so strong, and the sense of connection is not so strong. But if we want that relationship, that sense of pain of separation from Krishna is there, while trying to remember Krishna's instructions, or the instructions of the spiritual master. There's some desire to be in our relationship with our spiritual master, but not as strong as we would like it to be. But something is there that amplifies, it assists greatly the direct connection with Krishna. That's real life. You know, today, not, you know, the imagined tomorrow, but today. How can we cultivate Krishna consciousness? By taking this instruction from Chapter 15, Canto 1, Srimad Bhagavatam. Prabhupada, I'm going to read a part of a section where Prabhupada, from his writings, Krishna book, chapter 35, where he speaks about separation and its importance for sadhakas, you know, like us. Again, this is Prabhupada instructing for our benefit. Chapter 35 of Krishna book, by the way, this is Gopi Leela. It's, you know, way beyond our realm of realization. But Prabhupada is bringing it down to our level so that we can benefit as sadhakas and Gaudiya Vaishnavism. Prabhupada writes, "To acquire this strong feeling of separation is the teaching of Lord Chaitanya and his direct disciplic succession of Goswamis. When we are not in physical contact with Krishna, we can associate with him like the gopis through feelings of separation. Krishna's transcendental form, his transcendental qualities, pastimes and entourage are all identical with him. Devotional service to Krishna in feelings of separation elevates the devotee to the highest perfectional level." So from wherever we are on our trajectory of devotion, it may be way down here, that's okay. If you have understood the goal, even way down here, to be in our relationship with Krishna, cultivate that. I'm so far away from my relationship with Krishna. I don't have any feelings of love for Krishna. That's a feeling. Yes, that's a feeling. Chant with that feeling. Hear with that feeling. Serve with that feeling. Stay with that feeling. And what happens when you chant with feeling, even that feeling? Quality of chanting increases. It's a secret, and I'm sharing it with you. Chant with feeling is the message. Take a feeling. Go to the shelf and find a feeling. That's, you know, something that you're feeling. And chant with feeling. And quality will increase. Try it. Chant from the heart. Hear from the heart. Associate from the heart. Try it. Practice it. You're in the realm of bhakti, in the house of bhakti. And it's a whole other realm than the realm of the head. It's the realm of the heart. Devotion. Almost done. Well, almost done. In Jiva Goswami's Preeti Sandarbha, we mentioned previously Bhakti Sandarbha. So Preeti, affection, love, Preeti Sandarbha. He speaks on this very verse, text number 28, where this is Arjuna. He's been feeling a problem and now he's feeling relief from the problem. Because the problem was this trash in the heart. The material contamination of heart of forgetfulness of Krishna, in the shape of forgetfulness of Krishna. Arjuna became peaceful. The word that's used is shanta, but it goes beyond shanta or shanti, like neutral, peace. He's positively experiencing as if Krishna was present again. This is Jiva Goswami's explanation. As if Krishna was present with him again. Before his eyes, seeing Krishna, Vimala, all material contamination was gone. And as a result, he directly saw Krishna, going to text 21 of this chapter. Brahma Sampatya. He was directly seeing the personality of Godhead, although Krishna had left. So what was that seeing? It wasn't the same kind of seeing as material seeing is, but it was seeing. Like we, Prabhupada gives us this phrase, Shastra Chakshush, seeing through the eyes of scripture, or Jnana Chakshush, Bhakti Chakshush, he was seeing Krishna. Then Arjuna might have had a doubt. Maybe I'm just deluding myself. It's just in my mind. I'm feeling better because it's just some temporary thing with the mind. It's not really that I'm seeing Krishna and with Krishna. Beyond that doubt, Sutta Goswami is describing, or Vyas is writing, that because he had attained the Supreme Lord's association, he had that direct experience. Just like Bhakti Parashano Bhavo Viraktir Anyatra Cha, that verse that compares the eating process to the bhakti process. When you're eating, you're hungry. You've been fasting for some time. And you start eating. Somebody doesn't have to tell you what's happening. You can tell them what's happening. Now you're feeling your hunger is subsiding. Repeat after me. You feel it. You feel strength coming back into your limbs. And tushti, you feel satisfied. Somebody says, no, take some more sabji. No. They don't have to tell you, no, you shouldn't take some more sabji. How about some sweet rice? No. I'm feeling full. You feel it. Someone doesn't have to tell you. It's your direct experience. Bhakti is like that. When you're in bhakti, in devotion to Krishna, you can experience Krishna directly. Just like the first chapter of Nectar Devotion, the characteristics of pure devotional service, yes? Chapter 1. There's the first two of those six characteristics of devotional service. They are the benefit or the fruit of sadhana bhakti. That's what we're doing. Kleshagni and Shubhada. The sufferings of material existence are mitigated, and Shubha, the awakening of auspiciousness. What auspiciousness isn't material auspiciousness, it's transcendental. You're experiencing Krishna directly, direct contact within the heart. And then this Kleshagni, the destruction of kleshas, it's a byproduct. The sun is there, darkness is gone. When you're in devotion to Krishna, Krishna is touching your heart, your problems of material life are solved. Because the real problem is forgetfulness of Krishna. It's the permanent solution. Remember at a lecture in New York, Prabhupada was explaining this for our little Western pea brains. He was giving the example of the goldsmith method and the blacksmith method. It was very nice. He said the goldsmith method, they have a little hammer and they go tap, 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 tap. Tap, 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 tap. He made the sound. Tap, 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 tap. That's the goldsmith method. The blacksmith method, make a big fire, bellows. Big fire. Put the iron in the fire, put the iron on the anvil, this hammer goes, comes down, thud, boom. One stroke, everything is finished. That is bhakti process. Not this tap, tap, tap. So many unlimited adjustments of life, and it's still the same situation. We're still suffering. One method. Blacksmith method. Bellows. Make it red hot. Put it in the anvil on the fire. Boom. Everything is finished. And we said the same thing. Haribo. Prabhupada Gijai. But we have to follow the process. Not just from the head, but from the heart. Receive this message within the heart. And then we'll know for sure. It's not just in the mind. It's Krishna is with us. Krishna is present. We're feeling it. Prabhupada goes on to explain that actually disconnection with Krishna is not possible. Illusion makes us feel that disconnection is possible because we wanted it, so we're deluded into thinking it's possible. And then we have things like the discussion yesterday that said we're attached to the sources of our suffering, although nobody likes suffering. Yes, that was one of the questions. But that's illusion. But that's the nature of illusion. It's like chasing after water in the desert. Seeing the mirage. Yes? That's material life. We're chasing after happiness in a place where there's no happiness. It's a mirage. It looks like happiness, but it keeps eluding us until we're drawn into the desert of material existence and we die unhappy. Or deluding ourselves that, oh, it was okay. We had a nice trip into the desert. Life is a journey. And there are philosophers that speak like that. What's the goal of the journey? No goal, just journey. Like Professor Durkheim. What's the fruit of knowledge? No fruit of knowledge, just knowledge. Knowledge for knowledge's sake. Prabhupada said, no. Practical. Knowledge for what purpose? What's the goal of our life? What are we seeking? What is that place that's called happiness? Well, there's no place that's called happiness, just journeying, searching for happiness. Or give it a name, sense gratification. But is that happiness? The senses contact the object of the senses, what happens? Is that happiness? If that's happiness, we should have a lot of happy people in the world. We have a lot of unhappy people in the world. Doing very unhappy things to themselves and to others. If sense contacting sense objects, but Bhagavad Gita teaches that that's the source of dukkha. That's the illusion. But the material desires are impelling us. I'll go back to this one phrase that Prabhupada used. Profound. The accumulation of our material desires in the mind are the trash of material contamination. They accumulate due to our reactions to material desires. Hey, wait a minute, what's going on? It's a self-perpetuating system. There's the initial and there's the subsequent material desire. What's the initial material desire? I want to enjoy apart from Krishna. So when we look at that desire, if we say, oh, I want to embrace that one. I want to enjoy apart from Krishna. What's the fruit of that? More material desires. So how we react, how we respond, here comes this material desire. So now we're going down in our life. We're going down the path of life. And here comes a material desire. How do we respond to it? Are we going to say yes to the material desire or yes to Krishna? If we say yes to the material desire, it implicates us in more material desire, more trash in the heart, more suffering. It's that simple. And if we say yes to Krishna, then it's just an opportunity to serve. We don't have to act on that material desire. Not at all. In fact, it's just illusion. It's in it, you know, being more graphic. It's cheating. It's robbing us. It's a bandit, a thief, a robber, a dacoit coming to plunder us. And we're going, you know, here, take all my money. And I'll be happy. And that's happiness. We're being cheated. The real happiness is being lost. So we have to make the proper choices. Bhagavatam is helping us to make the proper choices. This connection with Krishna or from Krishna is impossible. Yet by Maya's influence, we are deluded into accepting the duality of separate existence. Yesterday, I want to speak about this again. This idea of strong and weak. And the strong exploit the weak. That just being a product of our desire to enjoy apart from Krishna. So sometimes we may be strong. We're exploiting the weak and thinking that's happiness. Then the unhappiness is we're being exploited. Sometimes it's a hill, sometimes it's a valley. It's all illusion. From Krishna's perspective, he's permitting that illusion, but he doesn't want. He's forever inviting us, come out of that illusion. It's very profound. This illusion of Maya has an alternative. And that's our taking shelter of Krishna. In devotion. Taking the words of Krishna, letting them enter our heart. That's how we cultivate devotion. As Arjuna is explicitly doing here. As soon as Prabhupada writes in his purport to text 31, almost done. As soon as Arjuna took up the instructions of Bhagavad Gita, expert as he was, he could at once eradicate the material conception of Lord Krishna, his eternal friend. He could realize that the Lord was still present before him. Even after he left? Yes. By his instruction, by his form, by his pastimes, by his qualities, and everything else related with him. So we don't have that direct experience, but we can hear from those that have that direct experience, and that's what Prabhupada calls the mystery of disciplic succession. It's mysterious, but Krishna is present, and one can factually experience it, just like by eating. Hunger is gone, strength is returning, you're feeling satisfied. One can see him. One can feel his presence, even in this present life, simply by understanding the Advaya Gyan of the Lord in devotional service. I'm going to read one last section and we're done. Text 30 in the last paragraph of the purport. Arjuna, this is Bhagavad Gita and battlefield and post-battlefield. Arjuna had no desire to fight with his relatives, but he fought for the mission of the Lord. He was always engaged in the execution of his mission only, and therefore, after the Lord's departure, he remained in the same transcendental position, even though it appeared that he forgot the instructions of the Bhagavad Gita. One should therefore adjust the activities of life in pace with the mission of the Lord, and by doing this, one is sure to return back home, back to Godhead. That is the highest perfection of life. Meaning, life is a series of hills and valleys. Sometimes we're up, sometimes we're down. Sometimes things are going very well, sometimes all that's going well, all of a sudden, it's gone. Our face is in the mud. And we don't know what happened. What to do? Or, it's a milder form of that. And what to do? Don't make the mistake, using the example that Prabhupada gives of a drowning man grasping for some straws. The straws may save me. Don't make that mistake. The problem is forgetfulness of Krishna. Turn your by practicing today these three things that I have given you to work on, it will give you the focus, the strength, the conviction, the satisfaction, the experience, so that when problem arises, you'll be able to face it with strength, with conviction, with courage, with spiritual vitality, because of loving relationships, because of the holy name, because of the instructions, the infallible instructions of Achyuta, the Supreme Lord. You'll be protected. You'll be safe. And by continuing to accelerate that process, return to the spiritual world. And in between, experience Krishna's presence. There's a long how-to answer. How to act, because back to the initial remarks, how to go from conceptualizing, accepting Krishna consciousness within the mind, to accepting Krishna consciousness in the heart, and experiencing it, as Arjuna is showing us by his example. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. So I'm going to go. take breakfast and we'll reconvene. How much time do you all need for breakfast? Hour, hour and a half? Half an hour. Let's do 45 minutes. When you finish, whenever that time is, in 45 minutes we'll reconvene. We'll begin with questions. And then we'll go through the last section, and then questions, and we're done. So then you can do the translation. Explain that to them in Hindi, and then do the translation of what I spoke. Then whenever that time is, 45 minutes later, is we resume. Go ahead, you can begin.
Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Maharaj. Maharaj ne abhi ye bataya ki abhi anuvad hoga Hindi ka. Maharaj abhi jayenge. To Hindi ke anuvad ke paschat 45 minute ka samay hai ki aap apni prasad paye aur breakfast prasad paye aur uske baad fir hum fir uske baad 45 मिनट के पश्चात फिर मिलेंगे उस समय प्रश्नों से हम शुरू करेंगे तो अभी शायद लगभग आधे घंटे का अनुवाद उसके बाद फिर 45 मिनट के समय है आपको लेके सो लगभग 10:30 बजे तक हम मिलेंगे फिर से यहीं पर Shri Rupan Maharaj ki jai. Om Gyana Tivarandasya Gyana Nirashalakya Chakshadavadamya Vismayashtavaya. Hare Krishna. कृपया ध्यान से सुने ये बहुत ही अपने लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है ये भाग जो अभी महाराज ने बताया कि श्रील प्रभुपाद कई बार ही बताए कि एक माता अपने बहू को अगर कुछ सिखाना है तो वो अपने पुत्री को सिखाएंगे बहू के सामने तो उस तरह से बहू सीखती है और मतलब ये एक तरीका है सिखाने का अगर अभी तक संबंध सास और बहू की पूरी तरह बनी नहीं और उसमें अगर वो कुछ सीधे ही बता दें तो वो घबरा जाती है इसलिए और सास क्या कहती है अपनी बेटी को बहू के सामने सिखाती है करेक्ट करती है तो उससे वो सीख जाती है तो कृष्ण भगवान भी यही कर रहे हैं अर्जुन के साथ अर्जुन को वो सूचना दे रहे हैं पर वो सब हमारे लिए है तो जो भगवद गीता का संदेश है वो हमारे लिए है और हमें ये भी सीखना है जैसे बहू सीखती है कि जिस तरह से बेटी ने उस अपने सास का जो वचन जिस तरह से उन्होंने ग्रहण किया तो वो भी सीखती है बहू तो उसी तरह हमको ये सीखना है कि अर्जुन ने किस तरह से ये शिक्षाएं ग्रहण करी। अभी अर्जुन भगवत गीता में है कि अर्जुन ने कहा कि कृष्णा मैं तुम्हारे जो भी वचन है मैं पूरे सत्य मानता हूं और मैं पूरे हर वचन को मैं स्वीकार करता हूं। और भगवत गीता के अंत में वो बोलते हैं कि अभी हाँ मैं पूरी तरह स्थिर हूं, मैं पूरा क्लियर हूं और अभी मैं आप जो बोलोगे मैं करूंगा। भगवत गीता शुरू होने के पहले अर्जुन को एक कठिनाई थी, वो समझ नहीं पाए, उनके एक कठिनाई थी, उनका कर्तव्य क्या है वो समझ नहीं पाए। वो तो वो कठिनाई का एक हल था जो भगवत गीता द्वारा भगवान कृष्ण ने दिया। अभी एक और कठिनाई आई, क्या कि भगवान कृष्ण ही धरती छोड़कर चले गए। तब एक कठिनाई थी जिसको भगवान ने सुलझा दिया था। अभी एक और कठिनाई आई कि भगवान धरती को छोड़कर चले गए, जो अभी अर्जुन के बड़े प्रिय मित्र थे और वो उन्होंने मित्र को खो दिया। तो अभी इसका हल अर्जुन ने क्या निकाला? अर्जुन ने जो कृष्ण ने वचन दिए, जो भगवत गीता के वचनों को अर्जुन ने स्मरण किया और उससे उसकी जो दुख थी, दर्द थी, जो इतनी लैमेंटेशन थी वो पूरी उतर गई, उसका मन बिल्कुल शांत हो गया। तो महाराज बता रहे हैं कि अपने जीवन में भी एक कठिनाई के बाद दूसरी कठिनाई, उसके बाद तीसरी कठिनाई, उसके बाद चौथी कठिनाई, ऐसे कठिनाइयां आते रहते हैं। इसको हम किस तरह से झेलना है ये हम अर्जुन से सीख सकते हैं। महाराज बताते हैं कि कई बारी जैसे कई बारी हम ऊपर अच्छे से चलते हैं और कई बारी अपना कॉन्शियसनेस डाउन हो जाता है, कई बारी ऊपर चलता है कई बारी डाउन होता है। चैंटिंग में भी कई बारी बहुत अच्छी चैंटिंग होती है और कई बारी डाउन होती है। तो महाराज बताते हैं कि इसको हम एक ऊपर होना पहाड़ की शिखर के जैसे मानते हैं और नीचे होना पहाड़ के नीचे आना, वैली, दो पहाड़ों के बीच में जो क्या कहते हैं खाई, शिखर और खाई, इन दोनों से। सो कई बार अपने जीवन में ऐसा समय आता है कि जैसे कि हमें लगता है कि हम अभी शिखर पे हैं और कई बार ऐसा लगता है कि हम खाई में गिरे हुए हैं। सो ये तो एक अपने ये सृष्टि की ये नीति है कि अपने जीवन में बस ऐसे ही शिखरे और खाई आते रहेंगे। तो हमको किस तरह से, खास करके जब हम खाई में होते हैं, जब हम पूरे नीचे होते हैं, तो हम किस तरह से उस कठिनाई को, कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं? अभी हमको ये समझना है कि अर्जुन के परिस्थिति से हम अपनी परिस्थिति को समझेंगे। अर्जुन की कठिनाई देखिए, वो एक महान योद्धा थे, महारथी थे, एक बहुत ही शक्तिशाली क्षत्रिय, परंतु वो बस छोटे बच्चों की तरह रो रहे थे, उनका चेहरा पूरा उतर गया था, बस रो रहे हैं और रो रहे हैं, उनके आंसू को कोई रोक नहीं पाया। तो और अर्जुन तो अपने साथ भी ऐसा ही कुछ घटना घट सकती है, अपने जो बहुत ही प्रिय है कोई, उनकी मृत्यु हो सकती है, या फिर जैसे अभी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गया है, बहुत सारे लोगों के जॉब्स चले जा रही हैं और बहुत ही परेशानी होती है लोगों को, जो तो वो कोई बड़े दुखी अवस्था में होंगे या हम उस अवस्था में होंगे, या किसी के घर में, लाइक किसी के घर में पति और पत्नी के बीच संबंध ठीक नहीं है, झगड़े हो रहे हैं और ऐसे कुछ, या अपने जीवन में ये हो रहा हो, तो ये सारी परिस्थिति को हम किस तरह से सामना करना चाहिए? ये तो बस एक के बाद एक इस भौतिक संसार में एक के बाद एक कठिनाई, या हम एक को सुलझाएंगे तो उसके बाद अगला है। तो दो तरह के चीजें करते हैं, जो जिनको स्वप्न देखने की आदत होती है वो ये स्वप्न देखते हैं कि मेरी परिस्थिति शायद, वो बस स्वप्न देखते रहते हैं कि मेरी परिस्थिति बदल जाएगी और मेरी अच्छी परिस्थिति मैं रहूंगा। दूसरा ये होता है कि जो ये कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकता है वो पूरी तरह चूर हो जाता है, चूर होकर वो बिल्कुल ही गलत आदतों में गुजर जाता है, जैसे आदतें ले लेता है, जैसे पीना और नशा करना और ऐसे सारी चीजें, ऐसे भी होती है। लोगों को यह पता नहीं चलता है कि किस तरह से इस कठिनाइयों को लें। तो महाराज ने कहा हृदय खोल करके सुनिए कि किस तरह से हमको ये कठिनाइयों का सामना करना है। ये अर्जुन अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं। या ये श्लोक 27th श्लोक है जिसमें अर्जुन ये बताते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को सारे अपनी कल विवरण दिखाए कि किस तरह से मैं सारे अपने पुराने कृष्ण के साथ जो संबंध, कृष्ण के साथ जो उन्होंने कार्य किए थे, उनका जो व्यवहार था, वो सब स्मरण कर रहे थे। उसके बाद अर्जुन अब ये बताते हैं कि अभी मैं जो भगवान ने गीतोपदेश में जो वचनों, उन्होंने जो सूचनाएं मुझे दी थी, जो शिक्षाएं दी थी, मैं उसको उससे आकर्षित हो रहा हूं। मैं उस पे जितना ध्यान कर रहा हूं, मेरे हृदय में जो ज्वाला है वो ठंडा हो रहा है। तो इसमें प्रोपोर्ट में प्रभुपाद बताते हैं कि ये कृष्ण ने जो गीतोपदेश दिया है ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, ये सारे समय के लिए और सारे जीवों के लिए लागू है। ये जो सूचनाएं दी है ये सबके लिए एप्लीकेबल है। तो ये जो अर्जुन ने किस तरह से उसकी बाधा हल करी, अर्जुन कृष्ण भगवान की जो वाणी थी उसको उसने स्मरण किया, बहुत गंभीरता से स्मरण किया और उसकी कठिनाई, उसको उसके हृदय में शांति आई। इसी तरह से महाराज बता रहे कि अपने जीवन में भी कई सारी कठिनाई है, तो हमारा हल ये है कि ये जो अपने को इंस्ट्रक्शंस मिलती है इस पर, इसको हमको स्मरण करना चाहिए, उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, तब अपने ये हम कठिनाई से बाहर आ सकते हैं। अपनी कठिनाई सिर्फ ये नहीं है कि अभी मेरा मानसिक आंदोलन है, मैं मानसिक आंदोलन को मैं दूर करना चाहता हूं, बस वही नहीं। अपनी सबसे बड़ी कठिनाई है कि हम ये भौतिक संसार में बंधे हुए हैं, इससे बाहर निकलना है। सो अगर हम ऐसे ये सूचनाओं को स्मरण करके उसको अपने जीवन में प्रयोग करने की कोशिश करें तो हम भौतिक संसार से ही बाहर निकल सकते हैं। तो महाराज ने बताया ये बहुत ही अच्छी, महाराज ने कहा कि ये श्लोक एक भागवतम में 10th कैंटो 10वें स्कंद में दूसरे अध्याय में 31वां श्लोक है, 31st श्लोक। इसमें महाराज ने बताया, इसमें ये अध्याय, दूसरा अध्याय 10वें स्कंद में सारे देवता भगवान कृष्ण की प्रार्थना कर रहे हैं। उसमें ये एक प्रार्थना है, ये वो ये बता रहे हैं कि हे भगवान, आप तो बड़े करुणामयी हो, आप सबके इच्छाओं को पूरी करते हो, और ये जो आचार्य है, जो आपके श्रेष्ठ भक्त आचार्य है, वो इस भौतिक संसार को पार करने के लिए एक नैया का इस्तेमाल करते हैं, और वो जो भौतिक संसार एक बड़ा समुद्र की तरह है, वो उस भौतिक संसार को एक नैया से पार करते हैं। और जब वो पार करते हैं, आश्चर्य की बात यह है कि वो वही नैया को समुद्र के इस तट पर फिर पहुंचा देते हैं, ताकि और लोग उसी नैया में बैठ करके समुद्र को पार कर सके। और वो नैया क्या है? वो नैया है भगवान के भगवान के पादों का आश्रय लेना, शेल्टर ऑफ कृष्णा'स लोटस फीट। सो ये बता रहे हैं कि महाराज ने बताया कि जैसे अभी श्रील प्रभुपाद, देखिए श्रील प्रभुपाद ने इस भौतिक संसार में वो शुद्ध भक्त थे, उन्होंने जिया, पर जब शुद्ध भक्ति से पूरी जीवन उन्होंने शुद्ध भक्ति में जिया, और जब वो इस संसार से चले गए, अपने लिए इतने सारे इतने भक्तों की संगति, इतने उनके किताबें, और वही सूचना है जिससे कि और इतने सारे लोग भौतिक संसार को छोड़ करके आध्यात्मिक संसार में गए, वही मार्ग हमको दिया गया। सो ये है नैया, ये कष्टी जो आचार्य लेते हैं, ये कष्टी पार करते हैं समुद्र, और वही कष्टी को यहां छोड़ देते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं कि जो कष्टी, समुद्र तो इतना बड़ा है, हम ये कष्टी से पार करके और वो खाली कष्टी को इस तरफ कैसे रखते हैं? तो इसको भागवत में एक और उदाहरण दिया गया कि जब कृष्ण भगवान के पादों का हम आश्रय लेते हैं, जो उनका कमल के फूल की तरह जो उनके पाद है, जब हम उनके आश्रय लेते हैं, तो जो ये भौतिक संसार है, जो एक महासमुद्र की तरह है, वो बस एक गाय के बछड़े जो के पद चिन्ह होते हैं, उसमें कितना पानी आ सकता है? बहुत कम पानी आता है। गाय के बछड़ों के जो पद चिन्ह होते हैं मिट्टी में, उसमें अगर हम पानी भरे हैं तो बहुत कम पानी होता है। तो ये देवता बताते हैं कि जो कृष्ण भगवान की आश्रय लेते हैं, जो समुद्र जैसा भौतिक संसार है, वो इतना छोटा हो जाता है जैसे कि गाय के बछड़ों के जो पद चिन्ह है, उतना छोटा हो जाता है। उसको तो पार करना बहुत आसान है। सो इसी तरह आचार्य जब आश्रय लेते हैं, उनके लिए, आचार्यों के लिए, कृष्ण भगवान का जिन्होंने पदाश्रय लिया है, उनके लिए ये महाभौतिक संसार एक बछड़े के पद चिन्ह के समान हो जाता है। इसलिए वो कष्टी से पार कर लेते हैं और फिर इस तरफ रख देते हैं। तो ये बहुत ही मुख्य बात है। कृष्ण भगवान ने भी यही किया। कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को, अर्जुन की कठिनाइयों की जब वो निवारण कर रहे थे, वो जो वही सूचना है हमारे लिए भी उन्होंने छोड़ दिया कृष्ण भगवान ने। तो हमें इस सूचनाओं का फायदा उठाना चाहिए। अभी महाराज ने बताया कि आध्यात्मिक और भौतिक में अंतर यही है। आध्यात्मिक क्या कहलाता है? वो चीज आध्यात्मिक कहलाता है जब हम उस चीज को कृष्ण के संबंध में देखें, तब वो आध्यात्मिक होता है। जब कृष्ण से स्वतंत्र और कृष्ण के संबंध के बगैर हम किसी चीज को देखते हैं, वो भौतिक कहलाता है। बस यही फर्क है आध्यात्मिक और भौतिक में। अगर हम कृष्ण के रिलेशन में कुछ चीज देख रहे हैं तो वो आध्यात्मिक है, और कृष्ण के रिलेशन के बाहर हम देख रहे हैं तो वो भौतिक है। तो महाराज ने बताया कि हमको जब हम अपने जीवन में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो हम क्या करना चाहिए? महाराज ने कहा कि कल हमने ये इस पे इस इन प्रश्नों पे हमने उत्तर दिया था। महाराज ने कहा कि से यस टू कृष्णा, कृष्णा को हाँ बोलना। कृष्णा को हाँ बोलने का क्या मतलब है? कृष्ण को कि जो उन्होंने हमको कठिनाई दी वो हमारे लिए कोई मुख्य संदेश है उसमें, तो हमें वो संदेश हमको समझ में भी नहीं आ सकता है। कई बार हमको क्या संदेश दे रहे हैं भगवान कृष्ण हमको समझ नहीं आता है, या और जिस उलझन में फंसे हैं उससे किस तरह से बाहर निकले हैं वो भी हमको स्पष्ट रूप से हमको समझ नहीं आता है। पर हमको क्या करना चाहिए? पर हम एक चीज कर सकते हैं, हम ये क्लासेस हम सुन रहे हैं और भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण की संदेश है ये हम पढ़ सकते हैं। उस समय हम अपना हृदय भगवान कृष्ण की तरफ ले जा सकते हैं, ये हमारे बस में है। उस उलझन से किस तरह से निकले ये हमको स्पष्ट रूप से उसका हमारे पास विचार नहीं होगा, पर हम ये जरूर कर सकते हैं कि जिस तरह से अर्जुन ने कैसे किया, भगवान की वाणी को स्मरण किया उन्होंने, और जैसे ही स्मरण किया उनका हृदय ठंडा हो गया। उनके हृदय में जो ज्वाला थी दुख की, सेपरेशन की जो ज्वाला थी वो ठंडी हो गई। तो महाराज ने बताया कि मैं तुमको एक मैप दे रहा हूं, मैप रोड मैप, एक मार्गदर्शन दे रहा हूं, नक्शा रोड मैप, मैं तुम्हें एक नक्शा दे रहा हूं जिससे कि तुम इस भौतिक संसार से बाहर निकल सकते हो। सिर्फ एक छोटे मोटे परिस्थिति में नहीं, हर परिस्थिति में हमको बाहर निकलने के लिए यही सूचना है कि जो शिक्षाएं हमने सुनी उसको स्मरण करें और उसको उस समय पर उपयोग करने की कोशिश करें। मुख्य बात यह है जो पपोर्ट में श्रील प्रभुपाद भी बताते हैं कि कृष्ण और कृष्ण के वाणी में कोई अंतर नहीं है। तो हमें ये आशंका होगी कि अरे अर्जुन तो बड़े भाग्यशाली थे, कृष्ण से उन्होंने स्वयं सुना, हम इतने भाग्यशाली थोड़ी हैं कि हमको कृष्ण की स्वयं दर्शन मिले। परंतु श्रील प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि कृष्ण की वाणी जो हम ये परंपरा में सुन रहे हैं कृष्ण के शुद्ध भक्तों के द्वारा, उनमें और कृष्ण भगवान के स्वयं आकर बोलने में कोई फर्क नहीं है। तो जो बेनिफिट, जो लाभ अर्जुन को हुआ, जो लाभ अर्जुन को कुरुक्षेत्र रणभूमि में कृष्ण भगवान से जो सुन के उनको जो लाभ हुआ, वही लाभ वही बेनिफिट हमको मिलेगा जब हम अपने गुरु से सुन रहे हैं यही संदेश। इसमें कोई अंतर नहीं है। श्रील प्रभुपाद इसको बताते हैं कि यह एक रहस्य है परंपरा का, मिस्ट्री ऑफ डिसाइपलिक सक्सेशन। तो इस तरह अगर हम श्रवण करते हैं तो अपनी जो भौतिक संसार है उसका अंत होएगा। कृष्ण भगवान चाहते हैं कि उसे अंत करें। कृष्ण भगवान को महाराज ने कहा टर्मिनेटर ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। जो अपने भौतिक संसार को अंत करने वाले हैं वो है कृष्ण भगवान, वो करना चाहते हैं। पर अपने साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम इस माया जाल में बंधे रहना चाहते हैं, हम इसी मोह में माया में फंसे रहना चाहते हैं, हम पूरी तरह उसी में उलझे हुए हैं और उसमें जो कोई कठिनाई आती है हम वो भौतिक ढंग से ही उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज कहते हैं, महाराज ने एक उदाहरण दी जैसे हमको एक किसी वस्तु के कारण एक छाया पड़ती है, हमको कुछ जगह पर छाया पड़ रही है, हमको उस जगह पर छाया नहीं चाहिए, पर हम क्या कर रहे हैं, हम वो छाया से ही झगड़ने की कोशिश कर रहे हैं, छाया को ही किसी तरह हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि वस्तु को निकाल करके वहां से हटाएं। तो इसका मतलब क्या, हम भौतिक कठिनाइयों को भौतिक ढंग से ही उसको उसका हल निकालना चाहते हैं, कृष्ण के बगैर वो असंभव है। महाराज ने बताया कि ये इतनी मुख्य सूचना है ये भाग भागवतम की, कि अपने बहुत सारे आचार्यों ने इस पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया। और ऐसे ही एक भाग 11वें स्कंद में आता है, बिल्कुल यही कि कृष्ण भगवान धरती छोड़कर गए और अर्जुन बहुत ही शोक ग्रस्त है। तो अर्जुन उस समय पर यही भगवद गीता के संदेश को ध्यान किया और उनका शोक पूरी तरह निकल गया। वो शोक ही नहीं निकला, पर महाराज ने बताया कि वो विमल हो गए, मतलब उनके जो हृदय में मल था वो निकल गया। तो जीव गोस्वामी इस पे ये बताते हैं कि अर्जुन बस ऐसे कुछ सार में वो भगवद गीता याद नहीं कर रहे थे, वो एक एक श्लोक याद कर रहे थे कृष्ण भगवान ने जो उनको सुनाई, जैसे नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम नावि जानाति लोको माम अजम अव्ययम। फिर अर्जुन ने यह भी ध्यान किया, मनमनाभव मन भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम एवैशेषी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। तो अर्जुन ने ऐसे श्लोक भगवत गीता से ध्यान किया और जैसे ही वो ध्यान कर रहे थे उनको उनका हृदय में बहुत संतुष्ट हुआ, वो पैसिफाई हुआ। ओके, दैट इज नॉट। तो महाराज ने बताया कि हम बच्चों को भी हम श्लोक सिखाते हैं, और जब बच्चे वो श्लोकों को कहते हैं कि ये श्लोक बोलो, तो बच्चे श्लोक भी बोल देते हैं, उसके बाद कहते हैं इसका मतलब बताओ, पर वो कहते हैं हमको नहीं पता। तो महाराज ने कहा कि हमको भगवद गीता के संदेश भी इस तरह से याद नहीं करना है बच्चों की तरह, कि जब हमको श्लोक बोलने की बारी आए हम श्लोक बोल दिए, पर उसका मतलब बताओ हम बता नहीं पाए। उसके श्लोकों का जो अर्थ है, जो संदेश का अर्थ है, हम जब श्लोकों को याद करते हैं उस पूरे संदेश का अर्थ को भी समझना है। उसी तरह जब हम क्लासेस सुनते हैं, पूरा जो संदेश महाराज दे रहे हैं उसके अपने जीवन में क्या उसका उपयोग करना है, पूरा अर्थ हमको समझना है। जब हम इस तरह से हम स्मरण करते हैं इन संदेशों को, तो अपना हृदय पूरी तरह ठंडा पड़ जाता है किसी भी कठिनाइयों में। तो अर्जुन इस तरह से स्मरण करने के बाद उसके जो शक्ति नाश हो गई थी वो उसको अपने उसको वो बहुत आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करता है ऐसे ध्यान करने से। तो महाराज ने बताया कि हमारे मन में इतने सारे शंका है, हम कल प्रश्न इतने सारे पूछ रहे थे कि कैसे करें। महाराज ने कहा बहुत ही मुख्य बात, ये ध्यान से सुने। महाराज ने कहा कि जब हम इस तरह से गंभीरता से जो हम सुनते हैं उसकी स्मरण करते हैं, तो कृष्ण भगवान स्वयं उधर उपस्थित हैं, वो स्वयं अपने पास उपस्थित है, प्रकट है उस वाणी द्वारा। और वो जो हृदय कृष्ण भगवान हृदय में बसे हुए हैं और वो अपने संकोच को हटाते हैं। ये बहुत मुख्य बात है। जब हम श्रवण अच्छे से करते हैं और जो हमने श्रवण किया उसकी स्मरण करते हैं, तो कृष्ण भगवान अपने हृदय में बसे हुए जो है वो अपनी संकोच को हटाते हैं। ये एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, ये हम स्वयं ही अनुभव कर सकते हैं इसकी। फिर से एक्सप्लेन करें। हाँ, जैसे कि हमें ये लगता है कि इसको थोड़ा विस्तारित करने से कि अब मेरे हृदय में एक संकोच है, इसको कैसे हल करें, कैसे हल करें, हम इसके पास जाके पूछना चाहेंगे, इसके पास जाके पूछना चाहेंगे, इसके पास जाके पूछना चाहेंगे। पर महाराज ये बता रहे हैं कि अगर हम श्रवण अच्छे से करें और जो हमने श्रवण किया उसको अच्छे से स्मरण करें गंभीरता से कि कृष्ण भगवान ये मेरे लिए बोल रहे हैं, इस भावना से जब हम श्रवण करते हैं और स्मरण करते हैं तो कृष्ण भगवान ही उसका समाधान देते हैं हमें, उस संकोच का। कृष्ण भगवान अपने साथ उपस्थित है वाणी के द्वारा, तब हमारे सारे संकोच दूर हो जाएंगे। जैसे अर्जुन के सामने अभी कृष्ण भगवान नहीं थे, उनको इतनी बड़ी कठिनाई थी कि मैं ये परिस्थिति को किस तरह से लूं। जब उन्होंने कृष्ण भगवान की वाणी की स्मरण की तब उन्हें ऐसे लगा कि कृष्ण भगवान स्वयं ही उधर उपस्थित हैं और उनका जो संकोच था, आशंका थी, सारी दूर हो गई। इसी तरह हमारे जीवन में सारे संकोच और सारे आशंकाएं सारे दूर हो सकती हैं, सारे कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। फिर महाराज ये काफी विस्तारित रूप से बताते हैं कि अगले, ये सिर्फ एक श्लोक की विवरण थी, महाराज ने इतने देर दी 27 श्लोक। सो आप सोच सकते हैं कि कितनी मुख्य है, उसमें हम जाकर के पढ़ भी सकते हैं इसे और फिर सुन सकते हैं महाराज ने क्या बोला इस पे। अगले श्लोक में सुत गोस्वामी ये बताते हैं कि जब अर्जुन इस तरह से कृष्ण भगवान की विचार कर रहे थे, इतने गंभीर तरह से उनके सूचनाओं को याद कर रहे थे, उनके पद, उनके कमल जैसे पदों पर वो स्मरण कर रहे थे, तब उनका हृदय पूरी तरह शांत हो गया और उनके हृदय में जो भी मल थे वो हट गए। ये विमला करके पद यूज करते हैं, जो भी मल थे हट गए। तो अर्जुन के लिए क्या मल था, अर्जुन के हृदय में क्या मल था जो दूर हुआ? अर्जुन के हृदय में ये मल नहीं, जो दूर हुई कि उनको ये रियलाइजेशन हुआ ये तो भौतिक संसार है, इसमें मैं कुछ ही समय के लिए हूं, ये शाश्वत जगह नहीं है और मेरा स्थान यहां शाश्वत नहीं है। कृष्ण भगवान जहां है मुझे वहां जाना है। तो उनके मन में जो कुछ मल था कि मुझे यही रहना है, वो मल पूरी तरह हट गया। तब वो समझ गए कि ये एक टेम्पररी सिचुएशन है, बस तत्काल अस्थाई, ये एक अस्थाई परिस्थिति है और मुझे इससे बाहर जाना है। इस तरह से उनके हृदय में मल हट गया। तो कृष्ण भगवान को सूर्य जैसे माना गया, सूर्य से उनकी तुलना की गई है। जैसे ही सूर्य उदय होते हैं पूरा अंधकार चला जाता है, उसी तरह से कृष्ण भगवान जब अपने कृष्ण भगवान की जब उपस्थिति होती है उनके वाणी द्वारा, तो सारी जो मल अंधकार है हृदय की वो दूर हो जाती है। श्रील प्रभुपाद अगले श्लोक में ये बताते हैं कि ये मल अपने हृदय में ये क्या मल है, वो है अपने भौतिक इच्छाएं, अपने भौतिक कामनाएं, मटेरियल डिजायर्स, ये मल है। ये किस तरह की मल है? ट्रैश, ट्रैश, ट्रैश का मतलब है कचरा। सो कचरे के समान है ये मल अपने हृदय में, ये सारे भौतिक आशाएं। तो महाराज हमको ये बता रहे हैं कि ये सारे मल को हटाने के लिए, इसके वजह से ही हमको दुख और ये कठिनाई सबका सामना करना पड़ता है। तो महाराज बता रहे हैं कि आज तुमको मैं यह संदेश दे रहा हूं, आज के क्लास का यह संदेश है कि कृष्ण से संपर्क करो, कृष्ण से संपर्क करो, हर कठिनाई परिस्थिति में कृष्ण से संपर्क करो। महाराज ने कहा कि मैं तुमको ये बताया हूं कि जाप के समय, क्लास सुनने के समय, शास्त्र पढ़ने के समय और भक्तों से इंटरेक्ट करने के समय हृदय हृदय लगाओ, हार्ट में हृदय से करिए ये सब चीजें, सिर्फ मानसिक व्यवस्था में नहीं, अपना पूरा हार्ट लगाइए इसमें। तो उस तरह से हम कृष्ण को संपर्क करेंगे, अपने चैंटिंग में कृष्ण को संपर्क करने की प्रयत्न करिए। जब हम सुनते हैं कृष्ण को संपर्क करने की प्रयत्न करिए, समझिए कि कृष्ण भगवान मेरे लिए संदेश दे रहे हैं। और वैसे ही भक्तों के बीच भी कृष्ण को संपर्क करने की प्रयत्न करिए। जैसे महाराज ने कल बताया था कि भक्तों, ये भक्त एक कृष्ण की एक प्रतिबिंब है जो एक मैसेज लेकर आ रहे हैं कृष्ण को, मुझे याद दिला रहे हैं कृष्ण भगवान की सूचना है। तो उस तरह से कृष्ण को संपर्क करिए हर चीज में। तो महाराज ने ये बताया कि हम किस तरह से इन सारे कार्यों में, इन सारे भक्ति के कार्यों में हम कृष्ण से संपर्क नहीं करते। जैसे चैंटिंग, चैंटिंग में हम जाप कर रहे हैं और हमारा मन और कहीं होता है, और कहीं जगह पर अपना मन होता है। तो वो उसकी तुलना किससे की गई है? हम एक अतिथि को अपने घर बुलाते हैं, क्योंकि जब हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं तो हम हरे हरे है एक निमंत्रण कृष्ण भगवान को, हमारे हृदय में आए हरे कृष्णा, वो एक निमंत्रण है कृष्ण भगवान को आने के लिए। तो मान लीजिए हम एक अतिथि को बुलाते हैं, बुलावा देते हैं उन्हें, और वो जब घर पर आते हैं हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, हम बैठ के अपनी कुछ किताब पढ़ रहे हैं या अपना कुछ कार्य कर रहे हैं, अपना कुछ चीजें समेट रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, उनका आदर ही नहीं करते। तो ये तो बहुत ही बड़ा इंसल्ट है उनके लिए, अपमान है। वही हम चैंटिंग में कर रहे हैं, कृष्ण भगवान को निमंत्रण देते हैं, कृष्ण भगवान आइए, और उसके बाद हम और कुछ कुछ सोचते हैं, कृष्ण भगवान के साथ नहीं होते और अपने ही चीजों में उलझे रहते हैं। तो ये कृष्ण भगवान का अपमान है, उनको बुला करके अपमान। महाराज कहते हैं आप किसी को बोलते हो कि आओ हमारे साथ घर पे भोजन करो, आप उनको निमंत्रण देते हो, और जब वो घर पहुंचते हैं दरवाजे पे ये लगा होता है कि हम घर के बाहर हैं, हम भोजन करने कहीं और बाहर गए हैं। इसी तरह हम जाप जब कर रहे हैं तो हम कृष्ण भगवान को बुला रहे हैं और कृष्ण भगवान को कह रहे हैं कि हम और कहीं चले हैं, और कहीं चले जा रहे हैं। तो महाराज ये कह रहे हैं कि मैं तुमको तीन चीजें दिया हूं, वास्तव में पांच चीजें हैं जो बताया गया है चैतन्य चरितामृता में, कि वो पांच चीज में से कोई एक अंग भी हम हृदय पूर्वक उसका उपयोग करें तो हमको आध्यात्मिक परिपूर्णता प्राप्त होती है। उसमें से महाराज ने कहा मैंने तुम्हें तीन अंग दिया हूं, एक नाम, दूसरा शिक्षाएं, या तो श्रील प्रभुपाद के पुस्तक से या श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का विस्तार से विवरण जो महाराज दे रहे हैं इन क्लासेस के द्वारा, ये है दूसरा शिक्षा है। तीसरा भक्तों की संगति। इन तीनों में जब आप उपस्थित रहना चाहिए, ये नहीं कि कृष्ण भगवान को आमंत्रित किया और आप उपस्थित नहीं हो, आप कहीं और चले गए। तो इन तीनों चीजों में अपना हृदय लाइए, आप उपस्थित रहिए इन तीनों चीजों में। महाराज ने यह बताया कि अर्जुन की जो परिस्थिति है इस समय, कि इस समय जो ये अर्जुन की परिस्थिति है उसकी तुलना जीव गोस्वामी ने भी धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर की परिस्थिति से की है। जैसे 13वें अध्याय में विदुर आते हैं धृतराष्ट्र को अपने अटैचमेंट से बाहर निकालने के लिए। धृतराष्ट्र पूरे उलझे हुए रहते हैं अपने भौतिक आसक्तियों से, भौतिक अटैचमेंट से। तो विदुर आते हैं और विदुर उनको शिक्षाएं देते हैं कि तुम ध्यान अपने भौतिक संसार में मत रखो, कृष्ण के तरफ ध्यान दो। उसी तरह जब धृतराष्ट्र और गांधारी महल छोड़कर चले जाते हैं, युधिष्ठिर बहुत दुखी होते हैं, उनके मन में बहुत आंदोलन होती है कि मैंने ये सब क्या, मेरे वजह से वो चले गए ऐसे सब। उस समय नारद मुनि आते हैं और उन्हें सूचना देते हैं, तुम इन सब चीजों में उलझो मत, कृष्ण के तरफ ध्यान दो। कृष्ण भगवान अभी कुछ ही समय में धरती छोड़कर जाने वाले हैं, उसके पश्चात तुम्हारा कार्य भी समाप्त होएगा, तुम भी प्रस्थान करना, कृष्ण के तरफ ध्यान दो। और यहां अर्जुन को भी यही संदेश है। अर्जुन भी किस तरह से कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान की तरफ ध्यान दे रहे हैं। कृष्ण भगवान का स्मरण करना और कृष्ण पर निर्भर करना ही सही में, वास्तव में संतुष्टि है, उसी में संतुष्टि है। तो महाराज ने बताया कि अर्जुन को क्या होता है, अर्जुन इतना दुखी था उसमें, उस वो इतना अर्जुन इतने रो रहे थे और इतना उनमें दुख था कि अपने मित्र को खोने पर। वो जानते थे कि वो भगवान श्री कृष्ण है, पर उनका भगवान श्री कृष्ण पर उनका निर्भर होना पूर्ण नहीं था, कंप्लीट नहीं था, उनका डिपेंडेंस कृष्ण भगवान पे कंप्लीट नहीं था। पर जब वो ये, इसीलिए वो इतने दुखी थे, निराश थे, शक्तिहीन हो गए थे। पर जैसे ही वो ये सूचनाओं की स्मरण उन्होंने करना शुरू किया, भगवद गीता की सूचनाओं की, तब वो कृष्ण भगवान के, भगवान पे पूरी तरह निर्भर हुए हैं, निर्भर हो गए, पूरी तरह डिपेंडेंट हो गए। इस वजह से उनका हृदय पूरा, हृदय में पूरी शांति हो गई, उनके हृदय की ज्वाला पूरी तरह ठंडी हो गई। महाराज ने एक और मुख्य बात यह बताई, बहुत ही मुख्य बात, कि अपने संप्रदाय में ये कहा जाता है कि जो विप्रलंब भाव है कृष्ण से दो दूर होने, विप्रलंब भाव जो कृष्ण के अनुपस्थिति में जो भक्त भक्ति फील करते हैं, अनुभव करते हैं, वो बहुत ही तीव्र होती है। जैसे कि महाराज ने ये बताया कि कृष्णा बुक में भी श्रील प्रभुपाद 34-35 चैप्टर, जहां पर गोपियों की लीला के बारे में चर्चा की है, वहां पर गोपियों की लीला, कृष्ण और गोपी की लीला तो बहुत ऊंचे श्रेणी की है, जो हमारे समझ के बाहर है। पर वहां पर भी श्रील प्रभुपाद उसको अपने समझ के सीमा में लेके आते हैं। तो गोपी और गोपी जब कृष्ण छोड़कर जाते हैं, गोपी तो सोच रहे हैं उनका स्मरण कृष्ण पे बहुत तीव्र है कि कृष्ण हमको त्याग करके चले गए, तो उस तरह से। तो पर ये हमारा, हमको भी उस स्थाई पर पहुंचना है, ये हमारा लक्ष्य है। क्योंकि अपने संप्रदाय में ये बताया गया है कि उस तरह का भक्ति करना, विप्रलंब भाव, वो बहुत ही सर्वोत्तम श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है भक्ति। अपने को भी वहां पहुंचना है, पर हम गोपी जिस तरह से अनुभव कर रहे हैं हम उस तरह से नहीं कर सकते, पर हम ये अप्लाई कर सकते हैं। क्या हमें ये सोचना है कि मेरा गोल कृष्ण भगवान को पहुंचना है, कृष्ण भगवान, और देखो मैं कितना दूर हूं, मैं कितना दूर हूं कृष्ण भगवान के पहुंचने से, कृष्ण को संपर्क करने से मैं कितना दूर हूं, ये अपने में भावना होनी चाहिए। हम फीलिंग ऑफ सेपरेशन इस तरह से अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, ये भावना से कि मुझे तो इतना दूर पहुंचना है और मैं कितना दूर हूं, मुझे अभी प्रयत्न करना है आगे जाने के लिए। इस भावना से जब हम जाप करते हैं, इस भावना से जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं, इस भावना से जब हम श्रवण करते हैं, और इस भावना से जब हम भक्तों की संगत में उनकी एसोसिएशन लेते हैं, तो हम बहुत तुरंत हम देखते हैं कि अपनी जो चेतना है वो अपलिफ्ट हो रही है, वो अपनी कॉन्शियसनेस प्योरिफाई हो रही है और अपलिफ्ट हो रही है। हमारे भक्ति की जो क्वालिटी है वो बहुत तीव्रता से बढ़ती है। महाराज ने बताया कि मैंने तुमको एक ये रहस्य बताया हूं आज, ये अभी जो बताई है ना कि किस तरह से सोचना चाहिए कि मैं कितना दूर हूं कृष्ण से, कृष्ण को संपर्क करने से मैं कितना दूर हूं और मुझे प्रयत्न करना है उधर जाने के लिए। इस तरह से जब हम भक्ति करते हैं बहुत ही तेजी से हमारी प्रोग्रेस, विकास या उन्नति होती है भक्ति में, अपनी प्रोग्रेस बड़ी तेजी से होती है। महाराज ने कहा कि इस तरह से भक्ति प्रैक्टिस करना और बस मानसिक रूप से भक्ति प्रैक्टिस करना, उसमें बहुत ही बड़ा अंतर है, और ये तुमको मैंने रहस्य आज बताया है। एक और बहुत मुख्य सूचना, जीव गोस्वामी ने इस पूरे अर्जुन का जो अनुभव होता है उसके बारे में क्या बताते हैं कि अर्जुन जब ये सूचना है कि स्मरण कर रहे थे तो वो कृष्ण की उपस्थिति वहां महसूस कर रहे थे कि कृष्ण भगवान उनके पास में ही है, दूर नहीं हुए बस वाणी स्मरण करने से। और महाराज ने बताया कि ये अपने जीवन में भी हम महसूस कर सकते हैं, जिस तरह से जब हमको भूख लगती है, हमने मान लीजिए उपवास किया बड़े टाइम से तो हम बहुत भूखे हैं और हमें कोई शक्तिहीन फील करते हैं, बिल्कुल कोई शक्ति नहीं है अपने में, पर जैसे ही हम प्रसाद पाते हैं और प्रसाद हम ग्रहण करते हैं तो हम उसी समय पर हमारा जो भूख है वो मिटता है, उसी समय पर अपने शरीर में हम शक्ति महसूस करते हैं, हम ये चीज महसूस कर सकते हैं, ये हम फील कर सकते हैं। अपने को जब हम खाते हैं हमको कोई दूसरा आकर बोलने की जरूरत नहीं होती है कि अभी तुम्हारा जो भूख है वो तृप्त हो गया है, तुमको तृप्ति मिल गई है, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही महसूस करते हैं। यहां तक कि महाराज बताया कि उसके बाद कोई तुमको बोलता है कि और कुछ सब्जी लोगे तो हम कहोगे नहीं नहीं बस मैं अभी संतुष्ट हो गया हूं, और कोई पूछता है कि थोड़ा खीर लोगे, कहते हैं नहीं नहीं बस अभी तो मेरा पेट भर चुका है, क्योंकि हम खुद महसूस करते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं होती है कि तुमने अभी खा लिया बस अभी रोको, अभी ये तुम अभी तुष्ट हो गए हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है, हम खुद ही महसूस करते हैं। उसी तरह कृष्ण भक्ति में भी हम कृष्ण भक्ति को भी इसी तरह महसूस कर सकते हैं, ये किसी और की सिखाने की बात नहीं है। जब हम इस तरह से सूचनाओं पर ध्यान करके प्रयोग करते हैं, हम कृष्ण की उपस्थिति अपने जीवन में उसी तरह महसूस करते हैं। किसी और को आके बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, कृष्ण अभी तुम्हारे साथ उपस्थित है, तुम अभी उसको कृष्ण भगवान को महसूस करोगे, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये रहस्य है भक्ति मार्ग की, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। महाराज ने फिर से इसको विस्तारित करने के लिए यह बताया कि भक्ति रसामृत सिंधु में पहले अध्याय में जीव गोस्वामी बताते हैं कि जब हम साधना भक्ति का अभ्यास करते हैं तो दो लक्षण है, दो लक्षण को हम महसूस करते हैं, एक क्लेशाग्नि शुभदा। क्लेशाग्नि ये होती है कि जो सारे अपने दुख और क्लेश जो हम महसूस करते हैं वो दूर होते हैं, हम बिल्कुल मुक्त, वेरी क्लोज। तो हम सारे कठिनाइयों से मुक्त फील करते हैं उस समय पर। जैसे ही हम साधना भक्ति को अच्छे से करने लगे तो सारी जो पहले वाले जो कठिनाइयां, मानसिक आंदोलन सारे दूर हो जाते हैं, वो है क्लेशाग्नि और शुभदा। हमारे जीवन में बहुत शुभ, सब चीज शुभ लगने लगती है हमें। जब हम कृष्ण से संपर्क करते हैं, भौतिक संसार की जो सारी कठिनाइयां एक साथ दूर हो जाती हैं। अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो वास्तव में प्रॉब्लम यह है कि हम कृष्ण भगवान को भूल गए हैं, वो है वास्तविक प्रॉब्लम। पर हम उसको, वो कई कई रूप में आती है और हम उन जो उस रूप में उस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करते हैं, सुलझाने की कोशिश करते हैं। श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि सुनार की जो मार होती है वो बिल्कुल धीमी धीमी होती है। जो सुनार जो सारे हार बना रहा होता है या और गहने बना रहा होता है तो बड़े धीमी धीमी तरह से मारता है, पर लोहार किस तरह से मारता है, वो लोहे को लेता है, गर्म करता है और उसपे हवा फूंकता है, उसको पूरी तरह से गर्म करता है और एक धमाके से एक मारता है, टक। तो कहावत है 100 सुनार की एक लोहार की। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि भक्ति भी ऐसे ही है, लोहार की एक मार फट। भक्ति मार्ग भी ऐसे है, ऐसे नहीं कि भाई धीरे धीरे धीमे धीमे हम करें, हाँ थोड़ा थोड़ा करेंगे, एक साथ एक झटके दे और भौतिक संसार दूर। तो हमें भक्ति को उस तरह से देखना चाहिए, ये नहीं कि हम भक्ति में प्रयोग करेंगे, चलो धीरे धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा हम उपयोग करेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रयोग करेंगे। पूरी तरह से हम भक्ति को जब अपनाते हैं तो वो एक लोहार की मार की तरह है। फिर श्रील प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि हम जो कृष्ण से डिस्टेंस असंपर्क, ओके मैं दूरी बोलूंगा, सबको समझ आ जाए। जो हम कृष्ण भगवान से जो दूरी महसूस करते हैं वो वास्तव में वो एक मोह है, माया है, क्योंकि हम तो वास्तविक रूप से, वास्तव में हमारा संबंध कृष्ण से क्या है, नित्य संबंध है। पर ये माया के प्रभाव से हम सोचते हैं कि कृष्ण से हमारी कोई संबंध नहीं है। तो और क्या, हम वास्तव में कृष्ण से हमारी संबंध है पर हम उसको भूल गए, और माया के प्रभाव से हम ये सोचते हैं कि हमारी कोई संबंध नहीं है, और हम इस मोह माया की जाल में एक जो बहुत ही एक
रेगिस्तान
जो मोह माया की जो रेगिस्तान जैसे जो रेगिस्तान है उसमें हम चल रहे हैं। और महाराज ने बताया कि कई सारे फिलोसोफर और उन लोगों ने कई सारे गीत भी लिखते हैं इस पे कि बस ये जीवन का एक लंबा सफर है, इस पे बस चलते जाना है, चलते जाना है। ठीक है, उनसे पूछो कि ये सफर का लक्ष्य क्या है, तो बोलेंगे नहीं बस चलते जाना है, चलते जाना है। वैसे ही श्रील प्रभुपाद एक किसी से उनकी बातचीत हो रही थी, तो श्रील प्रभुपाद वो बता रहे थे कि श्रील प्रभुपाद ने पूछा ज्ञान पाने का क्या लक्ष्य है, कहते ज्ञान पाने का कोई लक्ष्य नहीं है, बस ज्ञान होना है। तो बिना लक्ष्य के बस हम चलते जा रहे हैं, बस एक रेगिस्तान में वो क्या कहते हैं मिराज, मृग तृष्णा, राइट, जो मृग तृष्णा हमको तृष्णा इज द इमेराज, नो मृग तृष्णा इज नॉट द राइट वर्ड, मृग तृष्णा इज द हैंकरिंग ऑफ द डियर। व्हाट इज मिराज कॉल्ड, खैर अभी हम बताएंगे। मरीचिका, समझ आएगा सबको, मरीचिका नहीं आएगा समझ, जैसे हम सफर जब कर रहे हैं, दूरी पर हमको ऐसा लगता है कि वहां सड़क चमक रहा हो, है कि नहीं, पानी से लगता है वहां पर, क्यों, वो बस रिफ्लेक्शन है, सूर्य की किरणों की रिफ्लेक्शन है, तो उसको कहते हैं मिराज। पानी जैसे लगता है पर पानी नहीं है, उसी तरह रेगिस्तान में एक मृग को दूरी पर नजर आती है कि वो सूर्य की किरणें जब रिफ्लेक्ट होके आती है उसको लगता है कि वहां पर पानी है, तो वो उसके पीछे भागता है। महाराज कह रहे हैं हम पूरे जीवन भर कृष्ण को भूलकर जो इस जीवन की रेगिस्तान है उसमें भाग रहे हैं ये सोच कर कि अगले कदम पर मेरे को संतुष्टि मिलेगी, वहां पर पानी है वो मुझे मिल जाएगा। और वही, और उसमें अगर कठिनाइयां आती है तो ये सारे कवि, इतने सारे कवि और फिलोसोफर्स हैं, ये वो लोग ऐसे गीत लिख देते हैं कि भाई बस चलते जाना है, कठिनाइयां तो आते रहेंगी, बस चलते जाना है। तो महाराज कहते हैं कि अभी मैं फिर से उस पे आ रहा हूं, एक 29th श्लोक में जिसमें ये विवरण की गई है कि ये सारे भौतिक जो अपने इच्छाएं हैं वो कचरे के समान है, वो त्राश है अपने हृदय में। पर ये कहां से उत्पन्न होते हैं, ये हम अपने हृदय में ये कचरा सब हम किस तरह से जमा करते हैं। महाराज कहते हैं वो कचरा किस तरह से जमा होता है, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं पपोर्ट में कि ये परिणाम जो प्रतिक्रिया, ये अपने भौतिक इच्छाओं की अपने इतने ज्यादा जो भौतिक इच्छाएं हैं उन्हीं की प्रतिक्रिया है और भौतिक इच्छाएं। तो जो समझ नहीं आया, डिजायर सबको समझ में आता है, जो हमारे भौतिक डिजायर है, मटेरियल डिजायर है, उसी का रिएक्शन और मटेरियल डिजायर्स है। तो कहां से हम मटेरियल डिजायर्स को इकट्ठा कर रहे हैं, अपने जो पुराने मटेरियल डिजायर्स थे उसी की रिएक्शन है नए मटेरियल डिजायर। तो ये तो अभी अनंत है, हम एक भौतिक डिजायर को दूसरी भौतिक डिजायर से हटाना चाहते हैं और डिजायर आती है उसमें। तो महाराज कह रहे हैं तो हमारा तरीका जो है एक भौतिक भौतिक इच्छाएं, एक भौतिक डिजायर के वजह से एक कठिनाइयां आती हैं, तो हम उसको हल करने के लिए क्या करते हैं, एक और भौतिक डिजायर को अपनाते हैं। महाराज कह रहे हैं ये तो उसी तरह है कि एक डाकू आया अपने को लूटने के लिए, वो आता है लूटने के लिए, वार करने के लिए, और हम कहते हैं ओके, हम अपने जो सारी संपत्ति है उसे थमा देते हैं कि हाँ भाई लूट लो। तो अगर हम भौतिक कठिनाइयों को भौतिक काम से, भौतिक डिजायर से हल करना चाहते हैं तो वो उसी तरह है, आओ भाई डाकू हमें लूट लो, उसी तरह से उसकी तुलना की गई है। तो महाराज ने ये बताया कि ये ध्यान रखें कि जो भी तुम ये कठिनाई, जो तुम ये शिखर और खाई, शिखर और खाई, शिखर और खाई जो अपने जीवन में हम अनुभव करते हैं, ये भी बस मोह और माया है। कृष्ण का से जो नित्य संबंध है हमारा, उसमें ना तो ऐसा शिखर है ना खाई है। हम ये भौतिक संसार में मोह माया में है, इसलिए हमको कुछ चीजें शिखर जैसे लगती है, कुछ चीजें खाई जैसे लगती है। तो ये सारे भौतिक इल्यूजन है, और इस माया से बाहर निकलने के लिए हमको कृष्ण के ऊपर स्मरण करना चाहिए अपने हृदय से। तो महाराज ने बस ये बताया कि मैं फिर से तुमको ये सारांश बता रहा हूं कि अपना वास्तव में जो ना, एक और बात महाराज ने बताई इससे पहले कि महाराज ने कहा कि अपने जो कठिनाई है एक के बाद एक कठिनाई है, वो उसी तरह है कि जैसे एक समुद्र में एक व्यक्ति डूब रहा हो, और जब डूबता हुआ व्यक्ति वो किसकी सहारा ले रहा है, तिनकों की सहारा ले रहा है बचने के लिए। क्या होएगा, वो डूबेगा, तिनकों की सहारा से क्या कर सकता है, वो डूबेगा। हम वही काम करते हैं, जब कठिनाइयां आती है हम अपने बलबूते पर अपने भौतिक बुद्धि से उसको सुलझाने की कोशिश जब करते हैं, वो तिनकों की सहारा लेने वाली बात है। अपना मन, अपना हृदय कृष्ण के तरफ ले जाना चाहिए, तब सारे भौतिक कठिनाई हल हो जाएंगी। तो महाराज ने यही कहा कि अपनी मुख्य वास्तव में जो अपनी कठिनाई है, अपना वास्तव में जो दुख है, वो है कि हम कृष्ण भगवान को भूल गए हैं, और उस भूली हुई अवस्था में हम कुछ भी कार्य करें वो हमको दुख और दुख और दुख ही देगा। तो महाराज ने कहा कि मैंने तुमको तीन चीज दी है, जाप करना, हृदय से जाप करना, हृदय से क्लासेस सुनना, और हृदय से शास्त्र पढ़ना, और भक्तों के बीच में प्रीति की संगति बढ़ाना। ये तीन चीज तुम करो और इससे भगवान की स्मरण बढ़ाने की कोशिश करो, इससे तुम्हारे सारे प्रश्न हल होंगे। मैं किस तरह से इस कठिनाइयों को सुलझाऊं, किस तरह से इस कठिनाइयों को सुलझाऊं, किस तरह से इस कठिनाइयों को सुलझाऊं। इतने सारे कल मुझे प्रश्न मिले, महाराज ने बताया, मैंने उन सारों का उत्तर आज पूरी क्लास में मैंने एक लंबा सा उत्तर दिया है, पूरी क्लास एक लंबा उत्तर है, किस तरह से उसे समझो। हरे कृष्ण। श्रील रूपानंद महाराज की जय।